पृष्ठ संख्या 145, अध्याय 8। अध्याय का शीर्षक है ईश्वर का स्वरूप तथा गुण, या नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ गॉड। शीर्षक है विषय प्रवेश। किसी वस्तु के स्वरूप को बताने का अर्थ है उस वस्तु के कार्यों और गुणों का उल्लेख करना, क्योंकि कोई वस्तु अपने कार्यों और गुणों से ही पहचानी जाती है, वही उसका स्वरूप होता है। ईश्वर के स्वरूप को दिग्दर्शित करने का अर्थ है उसके गुणों का वर्णन करना। हम देख चुके हैं कि ईश्वर की विभिन्न धारणाओं से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हुए हैं और उनके अनुसार ईश्वर के स्वरूप और गुणों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में हम उनका उल्लेख करेंगे जिससे ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। अगला शीर्षक है ईश्वर का स्वरूप। ऐतिहासिक दृष्टि से आदिमकालीन धर्म में ईश्वर का स्वरूप प्राकृतिक शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। प्राकृतिक शक्तियाँ ही अनकेश्वरवाद के रूप में कल्पित की गईं। इस अनकेश्वरवादी धारणा में ईश्वर का मानवीकरण हुआ, फिर एक ही देवता को प्रधानता देने के कारण हेनोथिज्म देखा जाता है। इसी से एकेश्वरवाद की धारणा प्रचलित होती है, जिसमें ईश्वर को स्वतंत्र तत्व माना गया है और यह मत मान्य है कि संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा ही रची गई हैं। एकेश्वरवादी धारणा के विपरीत द्वैतवाद है, जिसमें ईश्वर और प्रकृति दो सत्ताएं मानी जाती हैं। धर्म दर्शन की दृष्टि से यह ईश्वर के स्वरूप पर संतोषजनक प्रकाश नहीं डालता। एकेश्वरवाद ही ईश्वर के स्वरूप का चित्रण करता है। देववाद, सर्वेश्वरवाद, पुरुषोत्तमवाद तथा ईश्वरवाद आदि एकेश्वरवादी धारणाओं ने ईश्वर के स्वरूप का अस्पष्ट चित्रण किया है, जिनमें सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया है कि ईश्वर ही एकमेव सत्ता एवं सृष्टिकर्ता है। वह विश्वव्यापी भी है और विश्वातीत भी। विकासवादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर का कोई निश्चित स्वरूप नहीं प्रकट होता जो धार्मिकता की दृष्टि से उपयोगी हो। विकासवादी दृष्टि से भविष्य का आदर्श ही मानव के लिए ईश्वर है और मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार मानवता ही सर्वोच्च सत्य एवं ईश्वर है। दोनों ही मत ईश्वर के निश्चित स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालते और इनसे धार्मिकता की पूर्ति भी नहीं होती। जेम्स के फलवादी सिद्धांत के आधार पर सीमित ईश्वर को स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार नैतिकता तथा शुभ की दृष्टि से ईश्वर पूर्ण है, परंतु सत्य की दृष्टि से अपूर्ण। आदर्शवादी दार्शनिकों ने ईश्वर को सर्वव्यापक बुद्धि के रूप में स्वीकार किया है। निश्चित है कि ईश्वर के स्वरूप को उपर्युक्त विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत उस रूप से चित्रित नहीं करते जो धर्म के लक्ष्य की पूर्ति कर सके। धर्म का ईश्वर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। उसे सर्वशक्तिमान, व्यापक एवं सर्वज्ञ होना चाहिए, जिसके समक्ष धार्मिक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को रख सके, वह आराध्य हो, पूजा और आराधना से द्रवीभूत हो सके, दिनों की पुकार सुन सके। पृष्ठ संख्या 146। हम देख चुके हैं कि ईश्वरवादी धारणाओं में केवल ईश्वरवाद के अनुसार ही ईश्वर धर्म का विषय माना जाता है। संसार के जीवित धर्मों में ऐसे ही ईश्वर की धारणा मिलती है। गैलवे और फ्लिंट ने तो ईश्वरवाद का ही समर्थन किया है। धार्मिक चेतना के विकास के लिए ही ईश्वरवादी विचारों का उद्भव हुआ है। फ्लिंट ने तो ईश्वरवाद को धर्म का पर्याय माना है। ईश्वरवाद ईश्वर के तात्विक और धार्मिक स्वरूप का विवरण प्रस्तुत करता है, जो धर्म दर्शन की दृष्टि से मान्य हो सकता है। इस प्रकार हम ईश्वर के स्वरूप की चर्चा सारांश में इस प्रकार कर सकते हैं। अगला शीर्षक है ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर परम आध्यात्मिक सत्ता है। ईश्वर पूर्ण है, उसमें क्रियाओं तथा उद्देश्यों की आत्मचेतना है। भूत भविष्य तथा वर्तमान का उसे ज्ञान है। सभी आदर्श एवं मूल्यों का आगार है, इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ मूल्य और सर्वश्रेष्ठ साध्य है। वह निरपेक्ष है, वह परम मूल्य है, क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं मूल्यवान समझी जाती हैं उनका मूल्य इसीलिए है कि वे परम मूल्य ईश्वर से संबंधित हैं। विश्व की संपूर्ण वस्तुएं ईश्वर के लिए साधन हैं। ईश्वर ही केवल साध्य है। ईश्वर अनादि अनंत और पूर्ण है। वही सृष्टि की रचना करता है तथा सृष्टि का पालन और संहार भी करता है। ईश्वर विश्व में समाहित है और उससे परे भी, इसीलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक सत्ता है। ईश्वर भक्तों के लिए व्यक्तित्व पूर्ण परम पुरुष भी है। वह उनकी पुकार सुनता है, कल्याणमय तथा प्रेम स्वरूप है। ईश्वर उपास्य और परम साध्य है। अगला शीर्षक है ईश्वर की व्यक्तित्व पूर्णता। ईश्वर के स्वरूप को देखकर यह प्रकट होता है कि ईश्वर में गुण वर्तमान है। चूंकि गुण किसी वस्तु के ही होते हैं, बिना गुणी के गुण संभव नहीं होता, इसलिए गुणों से युक्त गुणी का अवश्य ही एक स्वरूप भी होता है। यदि ईश्वर परम श्रेष्ठ सत्ता है तो सभी गुण उसी में प्राप्त होंगे और उसका एक स्वरूप भी होगा। धर्म दर्शन में ईश्वर के गुणों के कारण ही उसके स्वरूप को निरूपित किया गया है और उसे गुणों के कारण ही व्यक्तित्व पूर्ण माना गया है, क्योंकि गुण किसी व्यक्तित्व में ही संभव हो सकते हैं। तो क्या वास्तव में ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण सत्ता है? इस प्रश्न को लेकर धर्म दर्शन में बहुत बड़ा विवाद है। धार्मिक व्यक्ति तो ईश्वर को उपास्य और आराध्य मानता है, इसलिए ईश्वर को व्यक्तित्व पूर्ण मानकर ही चलता है। वह निर्गुणी की उपासना और अर्चना क्यों करेगा जो उसके आर्त क्रंदन को न सुने, क्षमा और दया न करे, प्रार्थना और स्तुति का प्रत्युत्तर न दे? फिर भी हमें यहाँ ईश्वर के व्यक्तित्व पूर्णता के प्रश्न पर विचार कर ही लेना चाहिए। इसी के आधार पर ईश्वर के गुणों की विवेचना संभव होगी। व्यक्तित्व शब्द से ही व्यक्ति और उसके विशिष्ट गुणों का बोध होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों का गत्यात्मक संगठन कहलाता है, जो व्यक्ति का उसके वातावरण से समायोजन में सहायक होता है। तो क्या ईश्वर का व्यक्तित्व इसी अर्थ में लिया जा सकता है? निसंदेह ईश्वरीय व्यक्तित्व का यह अर्थ नहीं है। ईश्वर को परम सत्ता, सृष्टा और पूर्ण माना गया है। उसको मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व पूर्ण मानना युक्त नहीं प्रतीत होता। साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व को ही मनोवैज्ञानिक अर्थ में लिया जा सकता है। ईश्वर पूर्ण है, उसका व्यक्तित्व भी पूर्णता का सूचक है। साधारण मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पृष्ठ संख्या 147। फिर प्रश्न होता है कि ईश्वर के व्यक्तित्व का क्या अभिप्राय है? मानव ने ईश्वर को अपने समान ही व्यक्तित्व पूर्ण सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। चूंकि मनुष्य में आत्म चेतना और संकल्प स्वातंत्र होता है, इसलिए ईश्वर भी आत्म चेतना और संकल्प स्वतंत्रता के गुणों से युक्त है। मैक्टा गार्ड ने व्यक्तित्व और आत्म चेतना से संबंध बतलाते हुए कहा है कि ईश्वर को व्यक्तित्व युक्त कहने का अर्थ है कि वह आत्म चेतन है। उसे अपने अस्तित्व का उसी प्रकार ज्ञान है जिस प्रकार मनुष्य को अपने अस्तित्व का। अतः मैक्टा गार्ड के अनुसार आत्म चेतना के गुण के कारण ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है, परंतु ईश्वर में केवल आत्म चेतना ही नहीं संकल्प स्वातंत्र भी है। वह अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप में विश्व की सृष्टि करता है, जगत का परिचालन करता है। वह पूर्ण और जगत का सर्वस्व है। अतः ईश्वर आत्म चेतना और संकल्प स्वातंत्र के गुणों से युक्त एक परम सत्ता है। आलोचना के रूप में यहाँ यह कहा जा सकता है कि मनुष्य में ये दोनों गुण पाए जाते हैं और वह व्यक्तित्व पूर्ण है, इसीलिए उसने ईश्वर में भी इन गुणों का आरोपण कर दिया है और उसे व्यक्तित्व पूर्ण मान लिया है। फिर मानव और ईश्वर में क्या अंतर है? इसके उत्तर में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है वैयक्तिक विशिष्टता। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न अपने वैयक्तिक गुणों के कारण ही माना जाता है। ईश्वर भी अपने विशिष्ट गुणों के कारण मानव और पशु से भिन्न है। बिंदु दूसरा है ईश्वर काल और दिक से परे है। मनुष्य का व्यक्तित्व काल और दिक की सीमा में होता है, परंतु ईश्वर का व्यक्तित्व काल और दिक से परे है। अतः मनुष्य और ईश्वर के व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट है। बिंदु तीसरा है मानव सृष्ट और ईश्वर सृष्ट करता है। ईश्वर संपूर्ण विश्व का रचयिता है, मानव को सृष्टिकर्ता नहीं कह सकते। वह ईश्वर द्वारा सृष्ट है, सृष्टि का एक जीव है। अतः मानव और ईश्वर के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। बिंदु चौथा है ईश्वर पूर्ण और शाश्वत है और मनुष्य अपूर्ण तथा अशाश्वत है। चूंकि ईश्वर सृष्टिकर्ता है, वह किसी के द्वारा सृष्ट नहीं है, इसलिए वह शाश्वत, अनादि और अनंत है। उसमें कोई अभाव नहीं है, इसलिए वह पूर्ण है। परंतु मनुष्य ईश्वर द्वारा किसी विशेष समय में रचा गया है। उसका जन्म होता है और मृत्यु भी। उसमें अभाव और कष्ट भी है, इसलिए वह अपूर्ण भी है। इस अर्थ में भी ईश्वर और मानव के व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट है। बिंदु पांचवा है, मानव का भौतिक शरीर और ईश्वर का अभौतिक शरीर। मानव अस्थि पंजर युक्त शरीर में आवेष्टित है, परंतु बाह्य व्यक्तित्व की दृष्टि से ईश्वर शारीरिक ढांचे से युक्त नहीं होता। ब्राइटमैन ईश्वर को शरीर युक्त मानने की कल्पना को बचपना कहते हैं, परंतु भारतीय मत के अनुसार तो ईश्वर को कभी कभी अवतारों के रूप में, भौतिक शरीर के रूप में भी माना जाता है। यहाँ भौतिक शरीर की समानता के अतिरिक्त ईश्वरीय व्यक्तित्व मानवीय व्यक्तित्व से अन्य कई अर्थों में भिन्न तो माना ही जा सकता है। यह प्रश्न विवादग्रस्त है। स्थानाभाव के कारण इसका विशद विवेचन संभव नहीं। इतना तो निश्चित है कि ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण सत्ता है। ईश्वर के व्यक्तित्व के प्रश्न को लेकर धर्म दार्शनिकों में दो वर्ग हो गए हैं। एक के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है और दूसरे के अनुसार व्यक्तित्व रहित और निर्गुण माना जाता है। जो व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर के विरोधी हैं, उन्होंने सगुण ईश्वर की आलोचना की है। इन आलोचकों के तर्कों का उल्लेख आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 148, शीर्षक है सगुण या व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर सीमित हो जाता है। व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की धारणा का विरोध करते हुए रैसडॉल का कहना है कि यदि ईश्वर को व्यक्तित्व पूर्ण माना जाता है तो उसकी असीमितता खंडित हो जाती है। मानव व्यक्तित्व पूर्ण है, इसलिए वह सीमित है। व्यक्तित्व की धारणा ही सीमितता को प्रकट करती है। चूंकि ईश्वर असीम है, इसलिए उसे सीमित व्यक्तित्व में आबद्ध करना उसके ईश्वरत्व को समाप्त कर देना होगा। बिंदु दूसरा है, मानवीय गुणों का आरोपण। मनुष्य ने ईश्वर का मानवीकरण किया है, इसलिए मानव के समस्त गुण और अवगुण ईश्वर पर लागू हो जाते हैं। ईश्वर तो पूर्ण और असीम सत्ता है। उसका मानवीकरण करके ससीम और अपूर्ण करना उचित नहीं है। बिंदु तीसरा है, व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर अशुभ तत्व से प्रभावित होगा। यदि ईश्वर को व्यक्तित्व पूर्ण माना जाता है तो उसमें मानवीय व्यक्तित्व की तरह अच्छाई, बुराई, शुभ अशुभ आदि का भी आरोपण हो जाता है, जो ईश्वर के ईश्वरत्व को समाप्त कर देता है। बिंदु चौथा है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए व्यक्तित्व पूर्ण नहीं माना जा सकता। व्यक्तित्व पूर्ण का समर्थन तब किया जा सकता है जब वह प्रत्यक्ष हो, क्योंकि व्यक्तित्व पूर्ण वस्तुएं तो देखी जा सकती हैं, परंतु ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। अतः ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यहाँ आलोचकों ने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ईश्वर के व्यक्तित्व का खंडन किया है, परंतु यह सर्वविदित है कि ज्ञान के साधन या प्रमाण केवल प्रत्यक्ष ही नहीं, अनुमान और श्रुति भी तो हैं। अवतारवादी धारणाओं से सिद्ध होता है कि ईश्वरीय व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण भी किया जा सकता है। बिंदु पांचवा है, ईश्वर विहीन धर्मों के आधार पर व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर का खंडन। बहुत से ईश्वर विहीन धर्म जैसे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि धर्म के लिए व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। अतः व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की धारणा गलत प्रतीत होती है। अगला शीर्षक है व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की धारणा का समर्थन। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की धारणा के पक्ष में धर्म दार्शनिकों का दूसरा वर्ग अपना मत प्रस्तुत करता है और धर्म के लिए व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को अनिवार्यता प्रदान करता है। उनके तर्क इस प्रकार दिए जा सकते हैं। इसमें पहला तर्क है प्रोफेसर गैलवे का तर्क। गैलवे का तर्क है कि व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को नहीं माना जाए तो संपूर्ण मानव की धार्मिक चेतना का विकास भ्रमात्मक कहा जाएगा। हमारी धार्मिक अनुभूति सत्य तभी मानी जा सकती है जब हम एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को माने। यदि कहा जाए कि बहुत से धर्म जैसे बौद्ध धर्म बिना ईश्वर की धारणा के ही विकसित हुए हैं, तो इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि उनमें भी विकास की गति के साथ संस्थापकों को ही ईश्वर के रूप में कल्पित कर लिया गया है। अतः गैलवे ने ठीक ही कहा है कि बिना व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के धर्म संभव नहीं है। प्रोफेसर गैलवे दार्शनिक निरपेक्ष को धार्मिक सगुण ईश्वर के साथ मिलाने के पक्ष में नहीं है। हेगेलवादी मत धर्म के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं प्रतीत होता। पृष्ठ संख्या 149। बिंदु दूसरा है, ईश्वर की धारणा से ही ईश्वर का व्यक्तित्वपूर्ण होना सिद्ध होता है। मानव ईश्वर के विषय में जिन धारणाओं को व्यक्त करता है उनसे ही प्रकट होता है कि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। यदि ईश्वर को निरपेक्ष, शाश्वत, पूर्ण, असीम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर गुण संपन्न है और ये गुण किसी व्यक्तित्व में ही संभव है। अतः ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। इसके विपरीत आलोचकों के धारणा निर्मूल सिद्ध होती है। बिंदु तीसरा है, मनुष्य के नैतिक और धार्मिक आचरण से ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना जा सकता है। मनुष्य की नैतिकता उसके उचित कर्म किसी महत् लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। वह धार्मिक आचरण करता है, पूजा, उपासना, आराधना तथा प्रार्थना की आकांक्षा मनुष्य के अंतःकरण में पाई जाती है। यहाँ प्रश्न होता है कि मनुष्य की ये आकांक्षाएं तथा आचरण किसके लिए? कोई उपास्य, आराध्य और पूज्य होगा जो उससे महान और सर्वगुण संपन्न होगा, उसी के लिए तो वह आत्मसमर्पण तथा आत्मनिवेदन करेगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य से भी महान एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है, जिसकी वह उपासना, आराधना और पूजा करता है, अपनी प्रार्थना द्वारा उसे द्रवीभूत करता है। अतः ईश्वर का व्यक्तित्वपूर्ण होना आवश्यक प्रतीत होता है। बिंदु चौथा है, जगत में अपूर्व व्यवस्था, सामंजस्य एवं ईश्वर के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा। ईश्वर को सगुण या व्यक्तित्वपूर्ण मानने का सबसे बड़ा आधार है जगत की व्यवस्था तथा यहाँ की वस्तुओं के बीच सामंजस्य। जगत में एक लयबद्धता व्याप्त है, प्रकृति एक नियम से शासित है। जगत की रचना इस व्यवस्थित ढंग से हुई है कि इसे देखकर लगता है कि किसी महान सर्वगुण संपन्न शक्ति ने ही इनकी रचना की है। यदि जगत का वस्तुओं में सामंजस्य न होता तो एक क्षण भी इसका चलना संभव न होता। इस विराट विश्व की अपूर्व व्यवस्था को देखकर मानव में स्वतः यह विश्वास घर कर जाता है कि यदि ईश्वर में विश्वास न करें तो अविश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर को तर्कों द्वारा न तो प्रमाणित ही किया जा सकता है और न तो अप्रमाणित ही। अतः विश्वास ही एकमात्र आधार है। बिंदु पांचवा है, संतों और रहस्यवादियों के अनुभव। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के विषय में विश्व के अनेक संतों एवं रहस्यवादियों के इतने अधिक अनुभव उदाहरण के रूप में प्राप्त होते हैं कि ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्णता खंडित नहीं होती। इस प्रकार उपयुक्त तर्कों से ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्णता सिद्ध होती है। यदि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है तो स्वाभाविक रूप से उसके स्वरूप के आधार पर ही ईश्वर के गुणों को प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला शीर्षक है, ईश्वर के गुण। ईश्वर के स्वरूप से ही प्रकट होता है कि ईश्वर एक परम सत्ता है। सत्ता बिना गुण के नहीं और गुण बिना पदार्थ के संभव नहीं। अतः ईश्वर में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उसे अनिवार्य सत्ता और उपास्य बना देते हैं। तात्विक दृष्टि से ईश्वर अद्वय, अनंत, आध्यात्मिक, नित्य, सर्वशक्ति संपन्न और निरपेक्ष है। धर्म की दृष्टि से ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अनंत, शुभ, सहानुभूतिशील, पवित्र, दयालु, भक्तवत्सल कहा जाता है। हम यहाँ धर्म दर्शन के आधार पर ही ईश्वर के गुणों की व्याख्या करेंगे। धर्म दर्शन के अनुसार ईश्वर के गुणों को दो रूपों में विभाजित किया जाता है। अ है ईश्वर के तात्विक गुण और ब है ईश्वर के नैतिक गुण। पृष्ठ संख्या 150। अब अगला शीर्षक है, बिंदु अ, तात्विक गुण। इसमें पहला है सर्वशक्तिमत्ता, दूसरा है सर्वव्यापकता, तीसरा है सर्वज्ञता और पूर्व ज्ञान, चौथा है नित्यता। अब अगला शीर्षक है, पहला सर्वशक्तिमान। धर्म में सदैव से ही ईश्वर को एक परम शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वशक्तिमत्ता से यह अर्थ प्रकट होता है कि वह शक्ति जो जगत की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न कर सके, उसकी रक्षा कर सके तथा उसका संहार भी करने में सक्षम हो। सर्वशक्तिमत्ता को अंग्रेजी में ऑमनीपोटेंस कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग अगस्टाइन ने अनंत शक्ति के अर्थ में किया है। ईश्वर में अनंत शक्ति सन्निहित है, अतः वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान से यह भी प्रकट होता है कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसे सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर अवश्य कर सकता है। यह धारणा धर्म के इतिहास को देखकर अस्पष्ट हो जाती है। प्राचीन धर्म से ही ईश्वर की कल्पना सर्वशक्ति संपन्न के रूप में की गई है। यदि ईश्वर में सर्वशक्तिमत्ता न होती तो उसे ईश्वर कहा ही न जाता। प्राचीन धर्म में यही शक्ति जीवात्मा के रूप में कल्पित की गई या वही शक्ति माना के रूप में भी देखी जाती है। अनेकेश्वरवाद अनेक ईश्वरों की शक्ति में विश्वास करता है और फिर एकेश्वरवाद में एक परम सत्ता ईश्वर ही सर्वशक्तिमान सत्ता है। यह अपरिमित अनंत तथा अनादि है। अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही वह जगत की रचना करता है, उसे धारण करता है और उसका विनाश भी करता है। जगत का कोई भी कार्य उसकी शक्ति के बाहर नहीं है। ईश्वरवादी धारणाओं में ईश्वर असीम और सर्वशक्तिमान सत्ता माना जाता है। शीर्षक है आलोचना। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में धर्म दार्शनिकों में बड़ा विवाद है। कुछ लोगों ने ईश्वर के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है और कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया है। इन तर्कों की परीक्षा आवश्यक है। इसमें पहला बिंदु है, ईश्वर सृष्टिकर्ता होने से सीमित हो जाता है। रचना या निर्माण से यह ध्वनित होता है कि निर्माण करने या बनाने के लिए पहले से उपस्थित वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, अतः यदि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह जगत की पूर्वावस्थित वस्तुओं का सहयोग लेता है। यदि ऐसी ही बात है तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहा। उसकी शक्ति अन्य वस्तुओं से सहयोग लेने के कारण सीमित कही जाएगी। फिर सीमित ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे माना जा सकता है? जे एस मिल ने ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया है। अगला शीर्षक है निराकरण। यहाँ ईश्वर को निर्माणकर्ता माना गया है, जबकि वह सृष्टिकर्ता है। निर्माणकर्ता को तो दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता निर्माण के लिए होती है, परंतु सृष्टिकर्ता तो एकमेव सत्ता है और वह किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। पृष्ठ संख्या 151। भारतीय मत में तो सृष्टि रचना से ईश्वर की पूर्णता न घटती है न बढ़ती है। इसका समर्थन टॉमसन और रायस के विचार भी करते हैं। सृष्टि रचना के द्वारा सत्ताएं उत्पन्न की जा सकती हैं, पर सामान्य सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। टॉमसन के अनुसार ईश्वर पूर्ण सत्ता है और सृष्टि रचना से सत्ता की पूर्णता ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः सृष्टि रचना के कारण ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता ही सिद्ध होती है, न कि सीमितता। बिंदु दूसरा है, क्या ईश्वर के लिए असंभव ही संभव है? ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से यह भी प्रकट होता है कि ईश्वर चाहे जो भी कर सकता है। फिर तो यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है, या दो और दो को मिलाकर चार के स्थान पर पांच कर सकता है, त्रिभुज को वर्गाकार कर सकता है, या वह पाप और हत्या भी कर सकता है? यदि ऐसा नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता। वह भी किसी सीमा में आबद्ध और सब कुछ करने में अक्षम है। शीर्षक है निराकरण। यहाँ सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ असंभव को संभव कहने के अर्थ में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईश्वर उन्हीं सब कार्यों को संपादित करता है जो उसके अन्य गुणों से मेल रखते हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर सीमित है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह अपने ही नियमों और गुणों से सीमित है। यह सीमितता की असीमितता है, न कि असीमितता की सीमितता। ईश्वर शाश्वत और अनंत है। उसकी अनंतता में जब विरोधी बातें होंगी, तभी वह सीमित समझा जाएगा। इसीलिए असंभव की संभावना नहीं हो सकती। बिंदु तीसरा है अशुभ। ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान होता तो संसार में अशुभ क्यों होता? यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर जानबूझकर विश्व में कष्ट, बीमारी, भूकंप, बाढ़, मृत्यु और कलह पैदा करता है, तो वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करेगा। यदि उसने जानबूझकर अशुभ नहीं उत्पन्न किया है, वह अपने आप है तो ईश्वर की सत्ता ही नहीं है या सीमित है। अतः या तो ईश्वर बुद्धिमान नहीं है या तो असीमित नहीं है। अतः ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। अब शीर्षक है निराकरण। अशुभ के अस्तित्व का प्रश्न बड़ा ही जटिल है, फिर भी इसके आधार पर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को खंडित नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने अशुभ की उत्पत्ति शुभ के विकास के लिए ही की। बिना अशुभ के शुभ की कल्पना हम उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार रात के बिना दिन की या अंधकार के बिना प्रकाश की। अब अगला शीर्षक है दूसरा, सर्वव्यापकता। ईश्वर का यह भी गुण माना जाता है कि वह सर्वव्यापी है। वह विश्व की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। ईश्वर की सर्वव्यापकता की धारणा में धर्म की प्रारंभिक अवस्था से ही देखी जा सकती है। आदिम काल में ईश्वर स्थान विशेष तक ही सीमित था, अर्थात किसी विशेष स्थान पर जाने से ईश्वर की व्यापकता का अनुभव किया जाता था। बहुदेववादी धारणा में विशिष्ट क्षेत्रों और कार्यों के मध्य विशिष्ट ईश्वर व्याप्त समझा जाता था, परंतु विश्वव्यापी धर्म में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त समझा जाने लगा। पृष्ठ संख्या 152। सर्वत्र ईश्वर भाव या आत्मभाव की धारणा संभवतः जीववादी धारणा का परिणाम है। संसार की समस्त वस्तुओं में आत्मा का निवास है। यही धारणा ईश्वर की सर्वव्यापकता का मूल आधार कही जा सकती है। ईश्वरवादियों के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता धार्मिकता की दृष्टि से परम आवश्यक है। यदि ईश्वर हमारे निकट संपर्क में नहीं होगा, यदि वह विश्व की रचना करके विश्वातीत हो जाएगा जैसा कि देववादी मानते हैं, तो वह उपास्य नहीं हो सकता। भगवान के विश्वातीत होने से भक्त की आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। अतः ईश्वर का विश्वव्यापी होना आवश्यक है। वह विश्व का प्राण है। उसके अभाव में विश्व की किसी वस्तु की सत्ता संभव नहीं कही जा सकती। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, ईश्वर दिक् काल से सीमित हो जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर ने विश्व की रचना की। विश्व की रचना किसी काल विशेष में हुई। सृष्टि के बाद ईश्वर विश्व रूपी दिक् में अवस्थित हो गया। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर दिक् काल की सीमा में है। अतः सीमित ईश्वर पूजा का विषय नहीं हो सकता। शीर्षक है निराकरण। ईश्वरवादी ईश्वर की व्यापकता देश काल में नहीं मानते। देश काल आदि तत्व तो ईश्वर की सृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। ईश्वर इनके अंतर्गत नहीं माना जा सकता। अतः ईश्वर देश काल से सीमित नहीं है। अब बिंदु दूसरा है विस्तार। ईश्वर की व्यापकता का दूसरा अर्थ विस्तार से लिया जाता है। अर्थात ईश्वर का संपूर्ण विश्व में विस्तार हुआ है। यदि व्यापकता का अर्थ विस्तार हुआ तो इसका अर्थ है कि ईश्वर जड़ द्रव्य है, क्योंकि विस्तार का गुण तो जड़ द्रव्यों में ही होता है। ईश्वरवादी ईश्वर को आध्यात्मिक सत्ता मानते हैं और फिर उसका गुण विस्तार भी बताते हैं। ये दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? शीर्षक है निराकरण। इस तर्क के उत्तर में कहा जा सकता है कि ईश्वर के विस्तार या व्यापकता का अर्थ भौतिक पदार्थ के अर्थ में नहीं लिया जा सकता। ईश्वर की व्यापकता एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने और विस्तार पाने के अर्थ में नहीं है। वरन उसकी व्यापकता उसकी क्रिया के रूप में अनुभूत की जा सकती है। गैलवे ने ईश्वर की व्यापकता को शरीर में आत्मा के विस्तार या व्यापकता के उदाहरण से ठीक ही स्पष्ट किया है। जिस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त है, हम शरीर के किसी एक अंग को स्पर्श करके नहीं कह सकते कि यहाँ आत्मा है, जबकि आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। उसी प्रकार जगत की किसी वस्तु को देखकर यह नहीं कह सकते कि यहाँ ईश्वर है और अन्य जगह या वस्तु में ईश्वर नहीं है, जबकि ईश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उसकी क्रिया संपूर्ण विश्व में दृष्टिगोचर होती है। इस अर्थ में ईश्वर सर्वव्यापी है। वह जगत का आधार है। बिंदु तीसरा है अशुभ। ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व के अशुभ में भी वही व्याप्त है। जगत में व्याप्त बुराइयों में ईश्वर ही व्याप्त है और वही समस्त अवगुणों का कारण है। अत्याचार, पाप, हत्या उसी के कारण है। फिर अत्याचारी, पापी, हत्यारा क्या कभी ईश्वर कहा जा सकता है? इस प्रकार सर्वव्यापकता की दृष्टि से ईश्वर का ईश्वरत्व समाप्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 153, शीर्षक है निराकरण। ईश्वरवादी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, उससे स्वतंत्र किसी वस्तु की सत्ता नहीं मानी जा सकती। ईश्वर अशुभ आदि में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार ज्ञान में अज्ञान या सत्य में असत्य। ईश्वर ने जीवात्माओं के अभ्युदय के लिए अशुभ का सृजन किया है। यदि अशुभ न होता तो शुभ का ज्ञान जीवात्मा को न होता और वह अपना आत्म विकास न कर पाता। ईश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता से जीवों को इच्छा स्वातंत्र की शक्ति भी दी है। वह अपनी इच्छा से शुभ अशुभ का चयन कर सकता है। बिंदु चौथा है सर्वेश्वरवाद का दोष। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अर्थ हुआ कि ईश्वर ही सब कुछ है। फिर तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और उन दोनों में कोई दूरी नहीं रह जाती। उपासक और उपास्य का अंतर समाप्त हो जाता है। कौन किसकी पूजा करेगा और कौन किससे प्रार्थना करेगा? अतः सर्वव्यापकता में धर्म का लोप हो जाता है। शीर्षक है निराकरण। ईश्वरवादी इसके उत्तर में कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी ईश्वर में अपने को विलीन नहीं कर देता। वह जगत का उपादान कारण होने के नाते सर्वव्यापी है और निमित्त कारण होने के नाते जगत से परे भी है। अतः भक्त और भगवान का स्थान बना हुआ है। उपासक और उपास्य दोनों के होने से धार्मिकता का लोप नहीं होता। तात्विक गुण के अंतर्गत अब शीर्षक है बिंदु तीसरा सर्वज्ञता और पूर्व ज्ञान। ईश्वर का एक विशेष गुण यह भी है कि वह सर्वज्ञाता है। उसे जगत की घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखता है। उसके ज्ञान की सीमा नहीं है। यह सृष्टि उसी की है, इसलिए वह सर्वज्ञ है। कहा जा सकता है कि जिसने मानव शरीर की रचना की है तो क्या वह शरीर विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ कहा जा सकता है? उसने संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है। विश्व में एक नियम और व्यवस्था है। अतः नियामक और व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर को संपूर्ण विश्व का ज्ञान है। मानव के ज्ञान और ईश्वर के ज्ञान में बहुत अंतर है। मानव का ज्ञान सीमित और अल्प होता है, परंतु ईश्वर का ज्ञान अनंत और असीम होता है। मानव के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना रहता है, जबकि ईश्वर के ज्ञान में इस प्रकार का द्वैत नहीं रहता। मनुष्य का ज्ञान तार्किक होता है, परंतु ईश्वर का ज्ञान सहज ज्ञान से होता है, जिसका स्वरूप अद्वैत होता है। अतः ईश्वर मनुष्य की दृष्टि से पूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। मानव की धार्मिक चेतना के विकास के साथ साथ ईश्वर की सर्वज्ञता का भी विकास देखा जाता है। आदिम धर्म में मानव टोलियों में रहता था, इसलिए उसका ईश्वर केवल उसकी टोली का ही सर्वज्ञाता था। अंकेश्वरवाद का ईश्वर अलग अलग विभागों का ही सर्वज्ञान रखता था, परंतु एकेश्वरवाद में वही ईश्वर संपूर्ण विश्व का सर्वज्ञाता हो जाता है। उसके ज्ञान से परे विश्व की कोई वस्तु या घटना नहीं कही जा सकती। पृष्ठ संख्या 154, शीर्षक है आलोचना। यदि ईश्वर सर्वज्ञाता है तो क्या वह मनुष्य की भविष्य की क्रियाओं को भी जानता है? मनुष्य में नैतिक क्रियाएं स्वतंत्र रूप से होती हैं। क्या स्वतंत्र क्रिया का पूर्व ज्ञान हो सकता है? बर्गसांत तथा अलेक्जेंडर के अनुसार ईश्वर को स्वतंत्र क्रियाओं का पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता। स्वतंत्र क्रिया का मतलब है बिल्कुल नई क्रिया जो पहले नहीं हुई है। फिर ऐसी क्रिया को कैसे जाना जा सकता है? क्या वर्तमान में चित्र निर्माण में लगा हुआ चित्रकार यह बता सकता है कि उसका चित्र कैसा बनेगा? क्योंकि बीच बीच में न मालूम कितने भाव उसके मस्तिष्क में आते जाते रहते हैं, जिनका उसको स्वयं ही पता नहीं रहता। इसी प्रकार बर्टोक्सी का कहना है कि मनुष्य भी जब तक अपने नैतिक कर्मों के विकल्प को न चुन ले, तब तक ईश्वर को भी क्या पता वह क्या करेगा। अतः ईश्वर सर्वज्ञाता नहीं कहा जा सकता। अब शीर्षक है निराकरण। उपर्युक्त तर्क के विरोध में संत अगस्टिन, एर फ्लुमैकी तथा मैकलॉस्के आदि तर्क प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्र क्रिया का पूर्व ज्ञान हो सकता है। एर फ्लू तथा मैकी आदि का कहना है कि मनुष्य की अनेक स्वतंत्र क्रियाएं कुशल मनोवैज्ञानिक द्वारा पहले से ही जान ली जाती हैं। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के विषय में बता सकता है कि वह किस पार्टी को अपना मत प्रदान करेगा। अब ईश्वर तो मानव के हृदय, मस्तिष्क और उसके चरित्र संगठन को अच्छी तरह जानता है, इसलिए आसानी से वह जानता है कि अमुक व्यक्ति अमुक परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेगा। अतः बिना किसी असंगत के कहा जा सकता है कि ईश्वर को मानवों की स्वतंत्र प्रक्रियाओं का पूर्व ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार ईश्वर की सर्वज्ञता और उसका पूर्व ज्ञान निश्चित है। यदि यह तर्क दिया जाए कि ईश्वर को मनुष्य के कर्मों का पूर्व ज्ञान है तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, तो इसके उत्तर में संत अगस्टाइन के शब्दों में कहा जा सकता है कि जो कुछ हम संकल्प करेंगे वह हम करेंगे ही, उसके पहले से जान लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। संत अगस्टिन पुनः ठीक ही कहते हैं कि यह ठीक है कि ईश्वर पहले से जानता है कि मानव क्या करेगा, और ईश्वर के इस पूर्व ज्ञान में कहीं भी धोखा नहीं हो सकता। परंतु ईश्वर के इस पूर्व ज्ञान से नैतिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को स्वतंत्र रीति से चुनने की शक्ति मानवों में ज्यों की त्यों अक्षुण रहती है। अब अगला शीर्षक है बिंदु चौथा, नित्यता। मानव की धार्मिक चेतना में ईश्वर अनंत और नित्य सत्ता के रूप में ही प्रकट होता है। आदिम धर्म में भी वह सत्ता चाहे जीव या माना के रूप में ही क्यों न रही हो, उसके प्रति नित्यता, असीमितता तथा अनंतता की भावना अवश्य जुड़ी रहती है। मानव में ईश्वर की नित्यता का भाव इसीलिए प्रविष्ट हुआ जान पड़ता है कि मनुष्य अपने को ससीम और अनित्य पाता है। उसे सभी कुछ परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और नाशवान दिखाई देता है। मानव ईश्वर में यह कमी नहीं पाता। ईश्वर जब सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्वव्यापी है तो अवश्य ही वह नित्य तथा अनंत होगा। पृष्ठ संख्या 155, शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, ईश्वर के नित्य होने का अर्थ हुआ कि वह परिवर्तनों और विकारों से अछूता है, अर्थात वह निर्विकार है। यदि ईश्वर निर्विकार है और जगत के परिवर्तनों से अप्रभावित है तो फिर वह न तो जगत का ही साथ देगा और न तो उपासकों का उपास्य ही रह जाएगा। यदि ईश्वर उपास्य भी है और जगत से संबंध भी रखता है तो जगत की परिवर्तनशीलता से वह अवश्य प्रभावित होगा। फिर ईश्वर की शाश्वतता और नित्यता कहाँ रह जाती है? दूसरा है, यदि नित्य और असीम, अनित्य तथा ससीम के विरोधी गुण है तो इस प्रकार की नित्यता परिमाणात्मक कही जाएगी। परिमाणात्मक आकलन भौतिक वस्तुओं का ही होता है। नित्यता की परिमाणात्मक व्याख्या ईश्वर को भौतिक वस्तु बना देती है, अतः ईश्वर की उपास्यता का लोप हो जाता है। शीर्षक है निराकरण। इन दोनों तर्कों का निराकरण दो रूपों में किया जा सकता है। प्रथम तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर की नित्यता और अपरिवर्तनशीलता जगत की परिवर्तनशीलता से उसी प्रकार प्रभावित नहीं होती जिस प्रकार सूर्य की किरणें जगत की भली बुरी सभी वस्तुओं पर पड़ती हैं, परंतु उनके गुण दोषों से बिल्कुल ही नहीं प्रभावित होती। चूँकि ईश्वर जगत का निमित्त और उपादान कारण है, इसलिए विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों है। वह जगत का साथ देता है, उसकी उपास्यता खंडित नहीं होती। इस प्रकार दूसरे तर्क के विरोध में कहा जा सकता है कि ईश्वर की नित्यता परिमाणात्मक दृष्टि से नहीं आंकी जाती। इसकी व्याख्या गुणात्मक और भावात्मक रूप में होती है, जो पूर्णता का द्योतक है। नित्य इसीलिए कहा जाता है कि यह अनित्य और ससीम नहीं है। ससीम और अनित्य वस्तुएं पूर्ण कभी नहीं हो सकती, वे दूसरों के अधीन होती हैं, परंतु ईश्वर स्वतंत्र पूर्ण और निरपेक्ष है। इस गुणात्मक व्याख्या में ईश्वर की उपास्यता अक्षुण रहती है। अगला शीर्षक है बिंदु ब, ईश्वर के नैतिक गुण। नैतिकता से शून्य धर्म का कोई अर्थ नहीं होता। दोनों का अपरिहार्य संबंध देखा जाता है। धर्म के विकास में देखा गया है कि अनकेश्वरवाद में ईश्वर के मानवीकरण के साथ ही साथ ईश्वर में नैतिकता का भी आरोपण किया गया। नैतिकता से शून्य ईश्वर की उपास्यता संभव ही नहीं रह जाती। धार्मिक व्यक्ति के लिए ऐसे ईश्वर की आवश्यकता होती है जो मानव शुभ को ध्यान में रखे, क्षमाशील, दयावान और न्यायी हो। व्यक्ति उसके समक्ष भीषण परिस्थितियों में अपने अंतर मन की व्यथाओं और व्यग्रताओं को अर्पित करता है, शरण में जाकर शांत और निश्चिंत होता है। हम विभिन्न धर्मों में ऐसे ही ईश्वर की धारणा पाते हैं। यहूदी और इस्लाम धर्म का न्यायाधीश ईश्वर, ईसाई धर्म का प्रेममय ईश्वर और हिंदू धर्म का क्षमाशील, दयालु, शरणदाता और पापों से उद्धार करने वाला ईश्वर नैतिक गुणों को ही प्रकट करता है। इस प्रकार ईश्वर के निम्नलिखित नैतिक गुणों की चर्चा की जा सकती है। इसमें पहला है सत्य एवं शुभ, दूसरा है न्याय परायणता, तीसरा है प्रेम, चौथा है दयालुता तथा क्षमाशीलता। पृष्ठ संख्या 156, बिंदु पहला है सत्य एवं शुभ। सत्य एवं शुभ ईश्वर के स्वाभाविक अंग हैं, इसीलिए ईश्वर को भारतीय मत में सच्चिदानंद कहा जाता है। ईश्वर ही सत्य है। सत्य उसका तात्विक और नैतिक गुण दोनों है। सत्य से परे उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ नैतिकवादी इसीलिए सत्य को ही ईश्वर की संज्ञा देते हैं और ईश्वर को सत्य का प्रतीक मानते हैं। सत स्वरूप ईश्वर में सत्यता का नैतिक गुण वर्तमान है। वह परम सत कल्याणमय है। शुभ या कल्याण सत्य से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। सत वस्तु अवश्यमेव कल्याणकारी होगी, इसीलिए ईश्वर में शुभ की कल्पना की जाती है। ईश्वर को परम शुभ भी कहा जाता है। मानव में शुभ और सत संघर्ष के फल स्वरूप होते हैं, परंतु ईश्वर में ये दोनों गुण स्वाभाविक अंग के रूप में हैं, इसीलिए ईश्वर को परम सत एवं परम शुभ भी कहा जाता है। मानव में सत एवं शुभ आंशिक होते हैं, परंतु ईश्वर में इन गुणों की पूर्णता होती है। अब अगला शीर्षक है दूसरा, न्याय परायणता। ईश्वर परम न्यायी है। वह जीवों के कर्मों के अनुसार न्याय करता है। सभी धर्मों में ईश्वर की न्याय परायणता प्रसिद्ध है। ईश्वर की न्याय परायणता के कारण ही मानव में नैतिकता संरक्षित है। यदि मनुष्य को भविष्य के जीवन और ईश्वर की न्यायशीलता में विश्वास न होता तो वह कितने अत्याचार करता, इसकी सीमा नहीं आंकी जा सकती। ईश्वर जो स्वयं न्यायशील है, विश्व की न्यायपरायणता को संरक्षित करता है। अब बिंदु तीसरा है प्रेम। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। भारतीय मत में ईश्वर को रसो वैसह कहा गया है। पाश्चात्य ईसाई साधकों ने भी प्रेम ही ईश्वर है ऐसा कहा है। भारतीय धर्मों में ईश्वर को प्रेममय मानकर ही माता पिता, सखा आदि विभिन्न संबंधों से जानने का उल्लेख मिलता है। ईसाई धर्म में प्रेम पिता की कल्पना की गई है। वह जगत ईश्वर के प्रेम का ही प्रकाश है। प्रेम के नैतिक गुण से ही ईश्वर मानव को आकृष्ट करता है। वह मानव का उपास्य है। बिंदु चौथा है दयालुता एवं क्षमाशीलता। ईश्वर श्रेष्ठ करता है। वह जगत के प्रति कठोर एवं निशंस कभी नहीं हो सकता। वह सृष्टि का पालन और संरक्षण करता है। जीवों का उद्धार करता है। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में ईश्वर पापों का उद्धार करता भी है। यदि जीव शरण में जाता है तो ईश्वर दया से द्रवित होकर उसके सभी पापों को क्षमा करके उसका उद्धार करता है। वह अशरण का शरण है। उसका जगत के प्रति प्रेम की दयालुता और क्षमाशीलता के रूप में प्रकट होता है। गीता में ईश्वर के नैतिक गुणों को दैवी संपदा के रूप में चित्रित किया गया है। मनुष्य यदि दैवी संपदा के अधीन कार्य करे तो निश्चित ही ईश्वर का प्रेम पात्र बने। अगला शीर्षक है आलोचना। इसमें बिंदु है ईश्वर का नैतिकीकरण करना न्याय संगत नहीं है। ईश्वर में नैतिकता का आरोप इसलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि ईश्वर विश्व से परे की सत्ता है। वह निरपेक्ष और निर्विकार है। उसमें इन गुणों को आरोपित करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। फिर यह भी कहा जाता है कि नैतिकता तो मानवीय अंतःकरण से उत्पन्न होता है। वह मानव के लिए तो चरितार्थ होती है, परंतु ईश्वर के लिए लागू नहीं होती। कुछ लोगों के अनुसार धर्म में उपास्य और उपासक में भेद होना चाहिए। इस दृष्टि से ईश्वर विश्वातीत होगा तभी उपास्य होगा। यदि विश्वातीत होगा तो उसमें नैतिक गुण हो ही नहीं सकते। अतः ईश्वर में नैतिकता का गुण संभव ही नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि ईश्वर में नैतिक गुणों की कल्पना करने से ईश्वर ससीम और अनित्य हो जाएगा और उसका ईश्वरत्व समाप्त हो जाएगा। अतः ईश्वर का नैतिकीकरण न्याय संगत नहीं है। पृष्ठ संख्या 157। शीर्षक है निराकरण। उपर्युक्त तर्कों के निराकरण के लिए एक सबल आधार प्रस्तुत किया जा सकता है कि मानव की धार्मिक चेतना में एक पूर्णता की भावना निहित है। जिस प्रकार ईश्वर अन्य सर्व गुणों में पूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार उसमें पूर्ण नैतिकता की भी कल्पना की जा सकती है। मानव की नैतिकता कभी पूर्ण नहीं कही जा सकती। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने को पूर्ण दयावान, सत्यवादी, क्षमाशील और न्यायप्रिय कह सकता है? अतः मानव की अधूरी नैतिकता पूर्ण नैतिकता में चरितार्थ होना चाहती है और वह ईश्वर में पूर्ण होती है। इसीलिए ईश्वर में नैतिक गुणों का आरोपण किया जाता है। अध्याय 8 समाप्त।